तो आज हम जो 12 महाजन की श्रृंखला हम पिछले एक डेढ़ महीने से चालू रख रहे हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनो, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद मुनि और शंभु शिव जी, इन तीनों के बारे में हमने पहले चर्चा की है। तो आज हम जो कुमार है चतुष कुमार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 12 जो व्यक्ति है उनको महाजन बताया गया है। वे आदर्श व्यक्ति है जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है। जब महाभारत में जो विख्यात संवाद है, महाभारत में दो विख्यात संवाद है, एक है भीष्म और युधिष्ठिर और दूसरा है युधिष्ठिर और यक्ष। तो एक में भीष्म और युधिष्ठिर में युधिष्ठिर सवाल पूछ रहे हैं और भीष्म जवाब दे रहे हैं, और युधिष्ठिर यक्ष संवाद में यक्ष सवाल पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज जवाब दे रहे हैं। तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, कह पंथः, किस मार्ग से हमें चलना चाहिए हमारे जीवन में। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, महाजनो येन गतः स पंथः। तो ये जो महाजनो येन गतः स पंथः, ये श्लोक न केवल भागवतम के 6 स्कंद में आता है पर ये महाभारत में भी आता है, और ये इतना विख्यात श्लोक की पंक्ति है ये कि एक सुभाषित जैसे है ये, कि जो पूर्व के महान हस्तियां है उनके जीवन से, उनके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। कह पंथा, किस मार्ग में हमें चलना है। तो चतुष कुमार जो है, जो उनके जीवन से हम प्रधान सीखते हैं कि व्यक्ति कैसे भक्ति की प्राप्ति करता है। तो वास्तव में कुमारों का उल्लेख पुराणों में कई बार आता है, न केवल पुराणों में आता है, चांडोग्य उपनिषद में भी आता है कि कैसे चांडोग्य उपनिषद में गुणगान होता है चतुष कुमारों का, कि वे महान हस्तियां हैं जिन्होंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्जित कर लिया है, और कई पुराणों में उनका गुणगान होता है। जैसे कि एक सनत कुमार संहिता है जिसमें सनत कुमार ये अम्बरीश महाराज को उपदेश देते हैं, और जो कृष्ण और गोपियों की बहुत गुह्य लीला है उसका वर्णन करते हैं उसमें भी। तो उसमें नारद मुनि जाते हैं शिवजी से पूछने के लिए कि भगवान की जो, भगवान दिन भर जो अलग अलग लीलाएं करते हैं उनका वर्णन कीजिए आप। तो शिवजी कहते हैं, ये आपने इतना ऊंचा सवाल पूछा है, इसका जवाब मुझे पता नहीं है। तो आप यह जाके वृंदा देवी से पूछिए। तो इसीलिए फिर नारद मुनि वृंदा देवी से जाके पूछते हैं और फिर वो विस्तारित रूप में जवाब देते हैं कि किस प्रकार की लीला है, भगवान किस समय करते हैं। और यह सुन के, यह सब सुनाते हमें कौन है, सनत कुमार। सनत कुमार ये 4 कुमारों में से प्रधान कुमार हैं। तो ये 4 कुमार जो है इनका, तो सनत कुमार संहिता ये कि पूरा ग्रंथ इन्होंने ही वर्णन किया हुआ है। उसी तरह से ये जो ग्रंथ है वो वास्तव संत कुमार का अम्बरीश महाराज का उपदेश है, और अम्बरीश महाराज 9 स्कंद में भागवतम का में वर्णन आता है कि ये महान भक्त है, मत पर भक्त है, पूरी तरह से निर्भय है, तो उनके वो एक तरह से गुरु है। तो उसी तरह से संत कुमार का वर्णन ये भी आता है कि वे जो 4 संप्रदाय है उनमें से एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। जैसे ये संप्रदाय ये क्या है, हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें किसी विद्यापीठ से जुड़ना होता है। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई है तो मैं घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो गए उनको पूछ सकते, मुझे खांसी हो गई है क्या करूं मैं, तो बोलेगे आपको थोड़ा आप गर्म पानी ले लो या ये कर लो, आपको बुखार हो गया है गर्म पट्टी, आप पट्टी लगा लो सिर पे, कुछ बोलेंगे। तो यह जो व्यावहारिक है और यह उपयुक्त भी है, पर अगर मुझे दवाई का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान चाहिए, जिस तरह से कि मैं खुद एक डॉक्टर बन सकता हूं, या दवाई का विस्तारित रूप से ज्ञान चाहिए, तो फिर इधर उधर से पूछ के मुझे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए मुझे एक विद्यापीठ में जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान कई जगह से मिल सकता है और कुछ हद तक वो सही भी हो सकता है। तो हम टीवी पर रामायण महाभारत देख सकते हैं, अमर चित्र कथा में कुछ प्रहलाद की कथाएं पढ़ सकते हैं, या फिर घर में कुछ कहानियां होगी, कुछ गीत है वो सुन सकते हैं, ये सबसे भी हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर हमें सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत की दृष्टि से अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें एक विद्यापीठ से जुड़ना चाहिए। और पद्म पुराण में बताया गया है कि चार विद्यापीठ है ये, तो ये जो संप्रदाय जो है ये एक आध्यात्मिक विद्यापीठ के समान है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो श्री प्रभुपाद जी ने शुरू किया है, जिसमें हम सब अभी सम्मिलित है, ये ब्रह्म संप्रदाय में आता है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो उसी तरह से एक संप्रदाय लक्ष्मी देवी ने शुरू किया है, वो श्री संप्रदाय कहते हैं। उसी तरह से तीसरा संप्रदाय जो है वह शुरू किया है कुमारों ने, चौथा है रुद्र शिव जी ने, रुद्र संप्रदाय। तो निम्बादित्यम चतुक्सनहा, पद्म पुराण में श्लोक आता है कि चतुष्कुमारों ने जो संप्रदाय शुरू किया है कुमार संप्रदाय, उसमें जो प्रधान आचार्य है वो निम्बार्क आचार्य है, वो उसके आगमी आचार्य नहीं है, उसके प्रधान आचार्य है। जैसे श्री संप्रदाय में जो अभी रामानुजाचार्य है उनके प्रधान आचार्य है, पर उनके पहले भी अनेक आचार्य हो चुके हैं, तो उसी तरह से निम्बार्क आचार्य प्रधान आचार्य है। तो ये कहने का महत्वपूर्ण यह है कि जो चार अधिकृत विद्यापीठ है जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनमें से एक विद्यापीठ की संस्थापना जो है वह चतुष्कुमारों ने की है, इसीलिए वे बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनके मार्गदर्शन में, जिससे कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चतुष्कुमारों का वर्णन जो है भागवतम के प्रधान रूप से तीसरे स्कंद में आता है, तीसरे स्कंद के 12वें, 15वें और 16वें अध्याय में आता है, और फिर उसके बाद में चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में आता है। तो हम प्रधान रूप से तीसरे स्कंद में जो कथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले व्यक्ति भगवान के अलावा कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ये भगवान के नाभि से जो कमल आया उससे उत्पन्न हुए वे, और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया, सृष्टि की शुरुआत की, तो उन्होंने जो पहली सृष्टि की, पहली उत्पत्ति की, वे है चतुष्कुमार। तो इसीलिए ये चतुष्कुमार ये सीनियर मोस्ट डिवोटी है। अगर हम वरिष्ठ भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे तो ब्रह्मा जी सबके गुरु है एक तरह से इस भौतिक जगत में, पर उनके बाद में सबसे जो वरिष्ठ है वो सनत कुमार है, और चारों कुमार है। तो ये चारों कुमारों के एक तरह से चारों लगभग इनमें इतना समन्वय है, इतनी मैत्री है, चारों भाई है उनकी, एक तरह से ऐसे उत्पत्ति हुई, कैसे कभी कभी अगर दो बच्चे एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उनको जुड़वे कहते हैं, तो ऐसे ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, क्वाड्रुपलेट्स होते हैं। तो अगर तीन बच्चे एक साथ उत्पन्न हो गए, चार बच्चे एक साथ उत्पन्न हो गए, तो इज देयर एनी, वो हिंदी में कोई शब्द है क्वाड्रुपलेट के लिए, अगर चार बच्चे एक साथ उत्पन्न हो गए, ये बहुत ही विलक्षण है, ज्यादा होता नहीं ऐसे ये, पर ये चारों जो चतुष्कुमार है ये चारों वो किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए है, ब्रह्मा जी के चिंतन से वो मानस पुत्र के समान उत्पन्न हो गए, पर वे चारों लगभग एक समय ही उत्पन्न हुए हैं। तो दो जुड़वे जैसे, तो चार जुड़वों के समान जैसे है ये। तो ये जो है उनका हमेशा भाव एक रहता है, इसीलिए पुराणों में जो वर्णन आता है तो ऐसे नहीं कहता है कि सनत कुमार ने ये कहा, फिर सनंद ने ये कहा, फिर सनातन ने ये कहा, नहीं, वो एक एक व्यक्ति जो बोलते हैं वो उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो इसीलिए वे चार अलग अलग व्यक्ति होते हुए भी, क्योंकि चारों महान व्यस्तिया है, चारों महान भक्त है, तो उनके चारों की इच्छा लगभग एक समान रहती है, इसीलिए वो 12 महाजनों में ये चार व्यक्तियों को एक व्यक्ति माना गया है, ये उनको चार व्यक्ति नहीं माना गया, एक व्यक्ति माना गया है, क्योंकि वे हमेशा साथ में कार्य करते हैं, वो अगर वो विश्व भर में भ्रमण भी करते हैं तो साथ में भ्रमण करते हैं, अकेले कहीं नहीं जाते हैं वह, से लगभग हमेशा साथ में रहने के कारण उनको एक व्यक्ति के जैसे ही संबोधित किया जाता है। तो ये चार कुमार जो थे, जब इनका जन्म हुआ तभी से वे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस समय तपस्या की थी, आध्यात्मिक भगवान का दर्शन किया था, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे थे, और फिर ये चतुष्कुमारों को उन्होंने की सृष्टि की, उन्होंने सृष्टि की मतलब उनको उन्होंने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, मानस पुत्र के रूप में। तभी वे इतने आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील थे कि वो जन्म से ही पूर्णतया विरक्त थे, किसी भी भौतिक चीज से आसक्त नहीं थे वे। तो जो ऊपर के लोगों में होता है उसमें जब कोई जन्म होता है तो उसकी बालावस्था नहीं होती है। जैसे इंद्र का जन्म होता है तो इंद्र कोई बालक नहीं होता है, बालक होके बड़ा होते नहीं, वो जैसे ही जन्म होता है वो युवावस्था में होते हैं और वो सनातन काल तक युवावस्था में रहते हैं। तो इसीलिए चतुष्कुमारों का जन्म हो गया, जैसे ही जन्म हो गया वे युवावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे, पर उन्होंने चिंतन किया कि ये भौतिक जगत ऐसी जगह है कि इसमें व्यक्ति बंधन में फंस जाता है, और बंधन में कैसे फंस जाता है व्यक्ति, कि वासनाओं के कारण हमारे ही मन में शरीर में भौतिक प्रलोभ भौतिक वासनाएं इस तरह से जम जाती है कि वो हमें भवबंधन में फंसा देती है। इसलिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपने दृढ़ संकल्प से ऐसा निश्चय किया कि हम जो नौजवानी है उसमें प्रवेश ही नहीं करना चाहते, कि जब तक व्यक्ति छोटा होता है तो भौतिक वासनाएं नहीं होते। शंकराचार्य कहते हैं बालावस्था क्रीड़ा सक्तम, छोटा बालक होता है तो व्यक्ति क्या होता है, क्रीड़ा सक्तम, वो खेलते रहता है, हमेशा खेलने में मग्न रहता है। पर उस छोटा बालक होता है तो भोगेश्वर प्रसक्तानाम, जो पुरुष स्त्री की ओर आकर्षण होना या पैसे की ओर आकर्षण होना ये सब नहीं रहता है। वो कब आता है, शंकराचार्य कहते तरुणावस्था तरुणी रक्तम, जब व्यक्ति युवक हो जाता है तो युवती की ओर, युवती हो जाती है तो युवक की ओर वो आकर्षण होता है, और फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वृद्धावस्था चिंता मग्नम, कि बूढ़ा हो जाता व्यक्ति तो चिंता में लग जाता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये करना है, वो करना है, ये ऋण लिया है कैसे फेड़ूंगा, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की शादी करनी है, ये करना है, और फिर परम ब्रह्म कोपि न सकतम, कि जो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति कोई आकर्षित नहीं होता है। ये शंकराचार्य ने लगभग एक डेढ़ हजार साल पहले कहा था, 1200-1400 साल पहले। अभी कलयुग इतना बढ़ गया है कि वास्तव में ऐसे नहीं कि बालावस्था क्रीड़ा सकतम, बालावस्था चिंता मग्नम भी आ गया है। क्यों, अभी छोटे बालक भी होते हैं, उनको इतना पढ़ाई होता है, परीक्षा होती है कि कैसे उसको उत्तीर्ण करेंगे पता नहीं, तो बचपन से चिंता होती है, छोटा छोटा बालक इतना कहीं पढ़ाई करनी है, वो करना है, वो करना है। और ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा एडवर्टाइजमेंट्स भी आ गया है कि छोटे बालक होते हैं, छोटा लड़का होता है, छोटा लड़की होते, उनको कैसे लड़की की ओर आकर्षित होना है, लड़के को आकर्षित करते, तो बालावस्था तरुणी रक्तम भी आ गया है। ठीक उसी तरह से जो कलयुग ऐसे आ गया है कि तरुणावस्था क्रीड़ा सक्तम भी है। कि व्यक्ति तरुण भी हो जाता है तो लोग वीडियो गेम देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जो क्रीड़ा होती है और क्रिकेट जो होता है तो इतना मग्न हो जाते हैं, और ये जो क्रीड़ा है ये केवल तरुणावस्था नहीं है, वृद्धावस्था क्रीड़ा सक्तम भी है। वृद्धावस्था में भी लोग क्रीड़ा से आसक्त रहते हैं। इधर से जो कलयुग बढ़ रहा है तो ऐसे सब प्रकार के जो विक्षेप है, जो भगवान से हमें दूर करने के कारण है, वह सब अवस्था में आ रहे हैं। न केवल तरुणावस्था तरुणी रक्तम ही नहीं है, तरुणावस्था चिंता मग्नम भी है। क्यों, आजकल लोगों को अपना नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी रहेगी कि नहीं, उसकी कितना चिंता रहती है, जो अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, मन के टेंशन रहता है, ये इतना विशाल मात्रा में है दुनिया भर कि इसका कोई, इसकी कोई कमी नहीं है। मैं जब पुणे में था तो एक पांचवी कक्षा का विद्यार्थी आया था, आज हमारे स्कूल में बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, ना किस पे सेमिनार था, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। पांचवी कक्षा का विद्यार्थी है उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे चिंता हो गई तो उसको कैसे संभालना है वो सिखा रहा है। तो ऐसे है कि हर अवस्था में हर प्रकार का विक्षेप है, और कलयुग तो ऐसे बढ़ गया है कि वृद्धा अवस्था तरुणी रक्तम भी है, जो व्यक्ति वृद्ध भी हो जाता है तो भी वासनाएं कम नहीं होती है, और वासनाएं अगर कम भी होनी चाहे तो होने नहीं देते हैं, होने नहीं देते हैं। इस्कॉन का एक वरिष्ठ सन्यासी है जयद्वैत महाराज, वे बता रहे थे कि वे जब वो विश्वभर में प्रचार करते हैं पर वो अमेरिका से है, तो उनका जब 50वां जन्मदिन था तो ये अमेरिका में सब लोगों का जो जानकारी होता है वो बड़े बड़े कंपनियां रख लेते हैं, और वो 50वां जन्मदिन था तो उनको एक बड़ा मेल आ गया उनके रूम में, और वो बोले कि वो मेल का क्या टाइटल था, देयर इज नो टाइम टू एंजॉय लाइक ओल्ड एज, कि भोग करने का ऐसा कोई भी समय नहीं है जैसे कि बुढ़ापा है। क्यों? वो बोलते हैं जब आप जवान होते हो तो क्या हो? आपको आपका करियर बनाना होता है, आपको बहुत कुछ करना होता है, पर जब आप बूढ़े हो गए जो भी करना है आपने कर लिया है, अभी सिर्फ भोग करो, और अगर कुछ समस्या है, अगर आपका पचन नहीं हो रहा है तो फिर वो हमारे पास डाइजेस्टिव थेरेपी है, अगर हम आपको पचन ठीक करने के लिए दे देंगे, अगर आपके बाल चले गए हैं हम आपको नकली बाल दे देंगे, हेयर लॉस थेरेपी है हमारे पास, अगर आपका चेहरे में सुर्खती आ गई है हम उसको सीधा कर देंगे, जो भी समस्या है उसकी हमारे पास थेरेपी है। तो जयद्वैत महाराज बोले मैंने उनको लेटर लिखा, फॉरगेट ऑल दिस थेरेपी, यू नीड सम इल्यूजन थेरेपी, Yes, आपको सब क्या कुछ मोह की दवाई चाहिए कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अभी मृत्यु के पास आ रहा है, अभी तो कम से कम भगवान पे हमें केंद्र करना चाहिए, पर ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये माया इस तरह से है कि आखिरी दम तक व्यक्ति को जकड़ के रखती है, आखिरी दम तक व्यक्ति को जकड़ के रखती है। तो इसलिए जी भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन है, तो इनमें जो चतुष कुमार थे उन्होंने सोचा कि अगर हम तरुणावस्था में चले जाएंगे तो तरुणावस्था में जो वासनाएं आती है वो वासनाओं के प्रलोभन में हम जाएंगे और हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं, पर क्यों उस वासनाओं के के सानिध्य में जाना है। इसीलिए उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, वे महान व्यक्ति थे, अस्ति थे, तो उनको योगिक शक्तियां थी उनके पास, तो योगिक शक्तियों से उन्होंने अपनी उम्र को कुमार अवस्था में रख दिया। कुमार अवस्था मतलब शास्त्र में बताया गया है कि 5 साल की आयु होती है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। प्रहलाद महाराज बताए कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, बोलते हैं जब कुमार अवस्था में व्यक्ति है तब से उसको भक्ति करनी चाहिए। तो जब वो 5 साल से छोटा व्यक्ति होता है तो क्या होता है, उस समय जो बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है तो समझ भी नहीं आता है कुछ ज्यादा, पर 5 साल का जब व्यक्ति होने लगता है तो समझ में आने लगता है। तो इसीलिए कुमार ने सोचा कि हम हमेशा के लिए इस 5 साल की आयु में रहेंगे, और इस इच्छा से उन्होंने अपनी आयु हमेशा उस समय तक रख ली। तो अभी भवबंधन के 2 कारण होते हैं, एक अंतरंग होता है और एक बहिरंग होता है। अंतरंग मतलब हमारी इच्छाओं के कारण हम बन जाते हैं, और बहिरंग क्या है, दूसरों की इच्छाओं के कारण। दूसरे लोग कहते आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो। जो भौतिक जगत का जो प्रभाव होता है उसके कारण, जैसे बहुत बार जो विद्यार्थीगण होते हैं वो अपने घर में रह रहे होते हैं तो माता पिता संरक्षण में रखते हैं, पर वो जब बाद में कुछ सीनियर कॉलेज के लिए वगैरह हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में क्या होता है, पूरा 24 घंटे कुसंग रहता है, बुरा संग रहता है, तो कई बार वो उसमें पतन हो जाता है। तो हमारे जीवन में हम प्रलोभन में अंतरंग दृष्टि से फंस सकते हैं, और अंदर की वासनाओं से फंस सकते हैं और बाहर के प्रभावों से फंस सकते हैं। तो जो अंदर की जो बाधा थी वो उन्होंने उसको रोक दिया, उसके परे चले गए, किस तरह से उन्होंने अपने आयु जो था उसको रोक लिया, पर जो बाहर से बाधा थी वो क्या थी, वो उनके थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की क्या इच्छा थी कि मुझे सृष्टि करने की सेवा दी गई है तो आप इसमें सहयोग करो, मुझे आप सहयोग करो, किस तरह से आप सृष्टि उत्पन्न करो। आप संतान उत्पन्न करके इस ब्रह्मांड को आप चलाने में मत करो। तो कुमारों ने सोचा कि वास्तव में ये ब्रह्मांड चलाना नहीं है, ब्रह्मांड के पार जाना है, तो हम इसमें फंसना नहीं चाहते। तो जब उन्होंने इस तरह से कहा, इस प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ है उनके आदेशों का हमें कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साधारणतया जो हमारे वरिष्ठ होते हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, पर अगर हमारे वरिष्ठ ऐसा आदेश देते हैं जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के प्रतिकूल हो, तो फिर उसका पालन करना हमारे लिए बाध्य नहीं है। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो थे वे हिरण्यकशिपु के आदेश का पालन उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते थे तो वो उनको भक्ति छोड़ देनी पड़ती थी। वे आदर्शील थे हिरण्यकशिपु के प्रति, कभी उन्होंने उनके अपमान नहीं किया जानबूझ के, पर उन्होंने अपनी जो भक्ति की दृढ़ संकल्पता थी उसको त्यागा नहीं। तो इसीलिए यह चतुष्कुमारों का आदर्श है कि ब्रह्मा जी का जो कर्तव्य था वो कर्तव्य जरूरी है, पर वो एक भौतिक कर्तव्य है कि सृष्टि की उत्पन्न करना है। जो देवता होते हैं उनकी दो भूमिकाएं होती है, एक होती है भौतिक, एक होती है आध्यात्मिक। भौतिक भूमिका होती है कि वे इस विश्व के सरकार में कुछ प्रकार किसी प्रकार के मंत्री है, वो कुछ उनको पद और उसके अनुसार उनको कार्य करना है, तो वो उनकी भौतिक भूमिका है, भौतिक सेवा है। और उनका आध्यात्मिक भूमिका क्या है, वे भक्त है। तो जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक ब्रह्म जी है वे सृष्टिकर्ता भी है, पर प्रधान रूप से वे भक्त के रूप में या आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए कुमारों ने कहा कि नहीं। तो इस तरह से जो दृढ़ संकल्प से उन्होंने नहीं बोला, तो पहले थोड़ा सा उससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और फिर उनके क्रोध से, जैसे मैं पिछले दो हफ्ते पहले बताया था, उससे शिव जी की उत्पत्ति हुई। पर ब्रह्मा जी क्रोधित भी हो गए, पर फिर भी वे समझ गए कि उनकी इच्छा जो है वो नेक है, इसीलिए वो जो क्रोध था काफी समय के लिए नहीं रहा। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें क्रोध आ सकता है। क्रोध ये जो है ये स्वाभाविक भावना है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो क्रोध आ जाएगा। पर क्या होता है, जो भक्त होता है क्रोध के कारण अपनी सेवा बंद नहीं होने देता है, वो क्रोध आता है क्रोध जाता है सेवा आगे रहती है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जन्म से ही ये कुमारों ने हमें क्या दिखाया है कि भाव बंधन में फंसने से कैसे बचना है, कैसे बचना है। अंदर से और बाहर से जो बाधाएं थे दोनों को उन्होंने बंद कर लिया। तो जो कुमार थे ये बचपन से आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। जो आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा है और भगवान है, तो जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार जैसे होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है पहले वो पाठशाला में जाएगा, पाठशाला से फिर कॉलेज में जाएगा, फिर कॉलेज से सीनियर कॉलेज में जाएगा, फिर सीनियर कॉलेज से बाद में उसको अगर डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करना है तो डॉक्टरेट डिग्री होगी। तो एक प्रगतिशील पद्धति से व्यक्ति आगे जाता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान में जैसे प्रगति होती है, तो पहले हम इस भौतिक जगत से आसक्त होते हैं, तो इससे धीरे धीरे अनासक्त हो जाते हैं, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह ब्रह्म ज्योति के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे व्यक्ति अंधेरे में है, तो जब अंधेरे में होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उस समय मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे है, बड़ा रास्ता है, उस पर चल रहा है और पूरा अंधकार है, और तभी अचानक कोई बड़ा ट्रक आ गया, और ट्रक की जो रोशनी होती है उसको ग्लेयर कहे, वो जो उसका जो बड़ी रोशनी होती है वो जब आंखों में आती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई बार ये बड़े शहर बड़े रस्तों पे इसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है कि वो जो रोशनी जो होती है वो इतनी तेजवान होती है कि उस रोशनी के कारण एक प्रकार का अंधकार हो जाता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में भौतिक अंधकार से बाहर निकलता है, तो जब ब्रह्म ज्योति, वो भी एक प्रकार की ज्योति है, और वो ज्योति से जब उसके आंखों में जाती है और जो उसको जाती है तो उससे अंधकार चला जाता है, पर जो रोशनी में जो दिखना है वो दिखता नहीं है। इसीलिए ऐसे बताया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग में दो प्रकार के अंधकार है, एक है काला अंधकार और दूसरा है सफेद अंधकार। काला अंधकार मतलब तमसोमा ज्योतिर्गम, इस भौतिक जगत का अंधकार। इस भौतिक जगत का अंधकार क्या है कि इसमें मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कुछ भी पता नहीं है मुझे, मैं पूरे अज्ञान में हूं। पर आध्यात्मिक जो सफेद अंधकार मतलब मैं समझ गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं कौन हूं यह समझा नहीं हूं मैं वास्तव में। तो जो जो चतुष्कुमार थे, जो हम खुद के विचार से, खुद के अध्ययन से, खुद के तपस्या से हम ब्रह्म ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान से परे जो है, जैसे रोशनी जब होती है तो उससे सबसे पहले अंधकार चला जाता है, पर बाद में रोशनी से हमको सारा जो जगत दिखने लगता है। तो उसी तरह से जब आध्यात्मिक रोशनी आती है उससे हमें भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, यह सब दिखता है। पर यह दिखने के लिए भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा करना आवश्यक है। चतुष्कुमार थे, वह ज्ञान से पूर्ण थे, जन्म से ही ज्ञान से पूर्ण थे, पर अभी तक न तो उनको भगवान का दर्शन हुआ था, न अभी तक उन्होंने भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा की थी। पर ब्रह्मा जी ने उनको बताया था कि वास्तव में वैकुंठ में जो विष्णु है वह रहते हैं, और यह विष्णु यह ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांत न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यांत न विदुः, इनका जो अंत है, जो इतने अनंत है, उनका अंत सुरासुर गणः, सुर या असुर किसी को पता नहीं है। और वो कैसे पता चल, उनके बारे में कैसे पता चलता है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जब योगी ध्यान अवस्था में जाते हैं तो अंदर ध्यान अवस्था में जो विष्णु मूर्ति को वो देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये उपदेश उनको दिया था, इसका साक्षात्कार उनको अभी तक नहीं हुआ था। और चतुष्कुमार जो है, तो ब्रह्मा जी से ऐसा उपदेश उन्होंने प्राप्त किया और फिर वे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लग गए। और ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते वे आध्यात्मिक जगत में चले गए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसका नाम है लघु भागवतामृत। लघु भागवतामृत जो ग्रंथ है वो अवतारों का विज्ञान है। उसमें बताया गया है किस अलग अलग प्रकार के अवतार किस तरह से है और वे उनकी क्या शक्तियां है, उनकी क्या इतिहास है, ये सब बताया गया है। तो उसमें बताते हैं कि 6 प्रकार के अवतार है, उसमें से छठा प्रकार का जो अवतार है उसको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। और शक्त्यावेश अवतार के 2 उदाहरण दिए है वहां पर रूप गोस्वामी ने, वो है चतुष्कुमार और नारद मुनि। तो ये दोनों जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। तो न केवल इस ब्रह्मांड में जा सकते हैं, इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, न केवल अलग अलग ब्रह्मांडों में जा सकते हैं, पर सचा सभी ब्रह्मांडों के परे जो परव्योम है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पर जा सकते हैं। तो चतुष्कुमार, उन्होंने सुना था अपने पिता से कि जो भगवान विष्णु है वो वैकुंठ में रहते हैं, और उनको उन्होंने बताया था कि वह सारे योग साधना की सर्वोच्च गति है। तो इसीलिए उत्कंठा के साथ वे आध्यात्मिक जगत की ओर जाने लग गए। और ऐसे बताया गया है, जैसे अगर आप कोई पारंपरिक मंदिर में जाओगे, जैसे कि श्रीरंगम जो मंदिर है रंगनाथ जी का, तो वहां पे 7 द्वार होते हैं। तो 7 द्वारों के परे जाने के बाद फिर जो भगवान का जो ऑल्टर होता है, जहां भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं, तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी वैकुंठ के 7 द्वार हैं। चतुष्कुमार जा रहे थे तो पहला, दूसरा, तीसरा द्वार सब पार करते हुए 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया। और ये जो अभी ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये 15वें और 16वें अध्याय का है, तीसरे स्कंद से। और इस तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में जो आध्यात्मिक जगत का बहुत ही रमणीय वर्णन है, वहां पे बताया गया है कि कैसे हर एक जीव जो है हर एक चीज वहां पे सचेत है, चेतना के साथ है, न केवल चेतना के साथ है, कृष्ण चेतना के साथ है, भगवत चेतना के साथ है, और सब भगवान का या तो गुणगान कर रहे हैं या गुणगान सुन रहे हैं। पंछी वहां पे ची नहीं करते हैं, आध्यात्मिक पंछी जो है वह भी भगवान का गुणगान करते हैं। वहां पे जो मधुमक्खी है वह भी जाती है, वो जब जाती है तो जैसे कुछ आवाज आता है, पर वो भौतिक जगत में आवाज आता है, आध्यात्मिक जगत में वो भी आवाज क्या है, वो भगवान के गुणगान है, भगवान का कीर्तन है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि जब मायापुर में सब भग गए थे तो मायापुर में बहुत मच्छर थे, तो मच्छर काट रहे थे बार बार, तो एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी क्या आध्यात्मिक जगत में मच्छर है? तो प्रभुपाद जी बताया, अगर वहां पे मच्छर है वो मच्छर काटते नहीं है, वो भी हरे कृष्ण जप करते हैं। तो वहां पे जो मच्छर है ये इस भौतिक जगत में हमारे ही पूर्व कर्म का फल देने के लिए एक, वो एक निमित्त के रूप में है, पर आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति प्रवेश करता है तो न पूर्व कर्म है न उसका फल है, तो सब कोई वहां पे कृष्ण भावना भावेती है, भगवत चेतना में मग्न है। तो उस तरह से यह सब रमणीय दर्शन करते हुए जब वे सातवें द्वार तक पहुंचे, तो उस सातवें द्वार में वहां पे जो दो द्वारपाल थे, आप कई बार देखते हैं कि मंदिरों के दरवाजे में दो व्यक्ति होते हैं, वो है जय और विजय, यह सातवें द्वार के द्वारपाल थे। और जय और विजय ने देखा था कि उसके पहले बहुत से अतिथि भगवान से मिलने आए थे, पर इस प्रकार के अतिथि कभी तक नहीं देखा था उन्होंने। क्या अजीब था इनके बारे में, ये बालक थे, 5 साल के बालक, और न केवल वे सिर्फ 5 साल के बालक थे, पर उनके केवल 4 दिशा ही वस्त्र थे, उन्होंने कुछ वस्त्र भी नहीं पहने थे। तो बोले ये कैसे, कौन आ गया यहाँ पे? तो इन्होंने सोचा कि ये तो इनको तो हम प्रवेश नहीं दे सकते, हमको इजाजत नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जो उनकी जो भाला थी ठक बंद कर ली। और संतोष कुमार जैसे वो सब कुछ देख रहे थे तो उनका भगवान का स्मरण बढ़ रहा था और भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ रही थी, और जैसे भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ रही थी और एकाएक रोक दिया जाए तो क्रोध आ गया उनको। तो मान लीजिए कि अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं और पीछे से गुलाब जामुन का सुगंध आ रहा है, और जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन अभी प्रसाद कार्यक्रम के बाद गुलाब जामुन यहाँ पे आने वाले हैं और सबको वो सुगंध और करीब आ रहा है, और जैसे ही व्यक्ति भी लेने वाला है आप नहीं ले सकते। तो क्या होगा, यह एक भौतिक उदाहरण है, पर इससे हम अंदाजा आ सकता है कि कैसे क्रोध आ जाएगा। तो वो दर्शन करना चाह रहे थे भगवान का, सोच रहे थे कि अभी ये सातवां दरवाजा है, इसके परे हमें भगवान का दर्शन होगा, और अचानक जब रोक दिया उनको तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आप वैकुंठ के द्वारपाल हो, आपको क्या बुद्धि नहीं है कि यह जो वैकुंठ इतना ऊंचा जगह है कि यहाँ पे कोई आतंकवादी आ नहीं सकते हैं, यहाँ पे कोई आक्रमण करने वाले कोई आतताई आ नहीं सकते हैं, एक तो सबसे पहले तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई आक्रमण करने वाले आ नहीं सकते हैं, और दूसरी तुम्हारी ये भी बुद्धि नहीं है कि हम आक्रमण करने वाले नहीं है, हम 5 साल के छोटे बालक है और हम यहाँ पे भगवान का दर्शन करने आए हैं। तो जो क्योंकि आपका हृदय दूषित है इसीलिए आप सबको दूषित देखते हो, जैसे आप हमारी दृष्टि होती है उस दृष्टि से हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो इसीलिए व्यक्ति अगर लोभी होता है तो वो सब कुछ जो देखता है लोभ के रूप में देखता है, उसका जन्मदिन होगा तो उसको अगर हैप्पी बर्थडे बोल के भेंट दिया तो भेंट देखता है 40 रुपए, उसके मन में क्या विचार, किसने कीमत है इसकी। तो क्या होता है, व्यक्ति अगर कामुक होगा तो काम वासना की पूर्ति देखता है, तो उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जो संशयी दूषित वृत्ति है उसके कारण तुम सबको संशयी दूषित दृष्टि से देख रहे हो, जैसे वृत्ति वैसे दृष्टि, और अगर इस प्रकार की वृत्ति है किसी की है तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें शाप देते हैं, आप यहां से आध्यात्मिक जगत से नीचे गिर जाओ, आपकी पात्रता नहीं है आध्यात्मिक जगत में रहने की। और जैसे ही जतुष कुमारों ने सुना तो पहले वे भयभीत हो गए। किस चीज के भयभीत हो गए? अगर हम हो गए तो हम सोच, अगर हमको शादी, अरे बाप रे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे होगा। पर भागवत में वर्णन है और ऋषिनाथ चक्र ठाकुर अपने दात्र में बताते हैं कि उनको पहला भय हुआ कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, कि ये जो हमने सोचा था कि बालक है पर वास्तव में ये ब्राह्मण है और भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है और हमने ब्राह्मणों को क्रोधित कर दिया है, इससे भगवान हमारे प्रति नाराज हो जाएंगे और उसके कारण वे दुखी हो गए। तो भक्त को जो अगर किसी भक्ति जीवन में कुछ समस्या भी आती है, कुछ गलती भी आती है, तो उसे पहला दुख ये दुख नहीं होता कि अरे मेरी बदनामी हो जाएगी, दुख ये होता है कि इससे भगवान को दुख होगा, भगवान के भक्तों को दुख होगा, यह भाव होता है, स्वार्थी भाव नहीं होता है। पर बाद में सोचा, दूसरा भाव क्या सोचा कि अगर जो शाप है, ये शाप तो ब्राह्मण को जो शाप होता है उसको टाला ही जा सकता है, तो अगर हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा तो हमें भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। और वह भी जो दुख था वो भी आध्यात्मिक ही था और दोनों प्रकार से इस तरह से वो बहुत ही उद्विग्न हो गए और उद्विग्न होकर चतुष कुमारों के चरणों में गिर गए, बोले कृपया हमें माफ कर दो आपको, और अगर आप हमने आपके प्रति अपराध किया है, आपने हमको शाप दिया है, तो भले ही हमें इस आध्यात्मिक जगत से नीचे गिरना पड़े पर कृपया हमें भगवान की विस्मृति न हो, हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सके, इस तरह से वे निवेदन करने लगेगा। और जब इस तरह से उन्होंने निवेदन किया, यह देखकर चतुष कुमार थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, वो समझ गए कि ये जय विजय है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति होगा अगर उसको कोई शाप दे देगा तो वो क्रोधित हो जाएगा या फिर वो सोचेगा नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, ये क्या बोल रहे कि मुझे माफ नहीं कर दो, हमें भगवान की विस्मृति न होने दो। यह जो चेतना है ये महान भक्तों की चेतना है। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि प्रभो मुझे नरक में भी जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं है, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो कुंभी पाकम गुरुरपेहरे नारकम नापनेति रम्या रामा का चित्तनुलता। वो बोलते हैं, सुंदर श्लोक है, लंबा श्लोक है, तो हम यहाँ पे समय के कमाओ के, वो बोलते हैं कि प्रभु हमको नरक में जाना पड़े तो भी कोई भाव नहीं है। भावे भावे हृदय भवने भावये यम भवंतम, हमारी एक ही इच्छा है कि हम नरक में, मैं आपकी भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं नरक के पशापों से बचूं, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे हृदय में हमेशा वास करें। तो यह जो भाव है यह शुद्ध भक्ति का भाव है और यह भाव देखकर वो चतुष कुमार थे वे भी आश्चर्यचकित हो गए और उनको लगने लगा कि वास्तव में ये महान भक्त है तो शायद हमने इनके प्रति अपराध कर दिया है कि ये जो महान भक्त उनको हमने शाप दे दिया है कि आप भगवान से दूर चले जाओ, भगवत धाम चले जाओ, तो ये हमने क्या कर दिया। और इस तरह से जो दोनों पक्ष थे दोनों उद्विग्न हो गए और उस समय जब इस तरह से भक्त दोनों चिंतित हो गए थे, दोनों उद्विग्न हो गए थे, विचलित हो गए, तो वहां पे भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान वहां पे न केवल अकेले आए, वहां पे उनके साथ लक्ष्मी देवी थी, सब पार्षद थे। ऐसे आध्यात्मिक जगत में बताया गया है कि सब देवी देवता भी है आध्यात्मिक जगत में, पर उनको कोई वहां वो केवल आध्यात्मिक जगत में भगवान का गुणगान करते हैं, वहां पे वो कोई अलग अलग सरकार का मैनेजमेंट उनको नहीं है, केवल भगवान का गुणगान की सेवा है वहां पे। तो ये सब देवी देवता भी देख रहे थे और उन सब के साथ भगवान विष्णु यहाँ पे आ गए। और 15वें अध्याय में भागवतम के 34वें स्कंद के विस्तारित वर्णन है भगवान के सौंदर्य का, कि ये जो विष्णु का रूप था वह उसका श्रवण चतुष कुमारों ने पहले किया था जब उनके पिताजी ने उनको बताया था, ब्रह्मा जी ने बताया था, और फिर उस श्रवण के अनुसार उन्होंने मनन करने का प्रयास किया था, तो उसका साक्षात्कार उनको अभी तक नहीं हुआ था पर उन्हें मनन किया था। तो ये जो चतुष कुमार थे वे ब्रह्मवादी थे, मायावादी नहीं थे। मायावादी जो होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का रूप माया है और उसके परे है भी जाके ब्रह्म में लीन होना है, पर जो ब्रह्मवादी होते वो ब्रह्म की ओर आकर्षित होते हैं, तो जो भगवान का रूप है उसका उसकी ओर उनका इतना आकर्षण नहीं है। क्यों आकर्षण नहीं है? क्योंकि भक्ति संजायते भक्ति, जो भक्ति होती है भक्ति से ही उत्पन्न होती है। तो अगर हमें किसी और भक्त का संग मिलता है तो उन भक्तों के संग से हमें भक्ति प्राप्त होती है। जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको भक्तों का संग नहीं मिला है, इसीलिए उनमें भक्ति जागृत नहीं होती। तो वो शायद जानते होंगे कि जैसे निर्गुण ब्रह्म है वैसे सगुण ब्रह्म भी है एक तरह से। भगवान निरूप न केवल है पर उनका रूप भी है, पर वो इस रूप की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं। पर जब भगवान के भक्तों की कृपा मिलती है या भगवान की कृपा मिलती है तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वे भक्त बन जाते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। तो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, तो ये बहुत ही विख्यात श्लोक है। चैतन्य महापुरुष इसको कई बार गान करते थे, भक्ति सामवेद सिंधु में भी इसका वर्णन है। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि अरविंद नयनस्य, जो भगवान है उनके अरविंद नयन है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, उनके जो चरण कमल है उनके चरण कमलों में तुलसी थी। किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, उनके चरण कमलों में तुलसी थी, वो तुलसी से जो वायु आई उससे जो हवा बह रही थी वो हवा उनके नाकों में प्रवास किया। संक्षोभम अक्षरज श्याम अपिचित तन्वो, उससे क्या हो गया, केवल उस तुलसी का सुगंध जो था उस सुगंध से वे इतने आकर्षित हो गए कि उनका जो ब्रह्मज्योति के प्रति आकर्षण था वो अंत हो गया और वे भगवान के भक्त बन गए, भगवान की ओर पूर्णतः आकर्षित हो गए। और इस तरह से जब वे भगवान का दर्शन करके भगवान का जो सुंदर रूप थे उसको रूप था उसको अपने आँखों से न केवल देख रहे थे पर वो पी रहे थे। नेत्रे पिबंती नैनाभिरामा, नेत्रों से पी रहे थे। और तभी भगवान विष्णु ने बोलना शुरू किया, तो ये 16वें अध्याय में वर्णन आता है। और जो भगवान विष्णु की जो वाणी है वह बहुत गुह्य है, उसका एक बाह्य अर्थ है और उसका एक अंतरंग अर्थ है। तो इसका जो वर्णन है प्रभुपाद जी और ऋषिनाथ ठाकुर अपने तात्पर्य में करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आप सब ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो मुझे इतने प्रिय है कि वास्तव में मेरे जीवन से वो मेरे जीवन से अधिक प्रिय है मुझे। और वे कहते हैं कि अगर मेरा हाथ अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करता है तो मैं मेरे हाथ को काट दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं मेरे स्वयं के हाथ को काट दूंगा अगर मैं वो मेरा हाथ ब्राह्मणों के प्रति अपराध करे तो। और दुनिया कहती है कि मैं सबको शुद्ध करता हूं और मैं लक्ष्मी का स्वामी हूं, पर वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में मैं क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों के धूली को मेरे सिर पे लेता हूं उसके कारण मैं शुद्ध होता हूं, और क्योंकि मेरे सिर पे धूली है इसलिए लक्ष्मी देवी मेरे साथ में रहती है। और वे कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ के रूप में मुझे आहुति प्रदान करता है तो उससे मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को श्रद्धा के भाव से आदर के भाव से भोजन दिलाता है। और अगर कोई ब्राह्मण क्रोधित भी हो जाते हैं और शाप भी देते हैं तो भी अगर वो व्यक्ति शांत रहता है और आदर से वो ब्राह्मणों को सांत्वना करता है तो मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। तो ये जो मेरे जो द्वारपाल है जय विजय, उन्होंने जो मेरे आपके प्रति अपराध किया है वह अपराध उन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे सेवक है और जो सेवक की गलती होती है वो स्वामी की गलती होती है, तो इसीलिए ये मेरी गलती है और इसीलिए मैं आपसे भगवान ऐसे डायरेक्टली कहते मैं आपसे माफी मांगा जाता हूं ऐसे नहीं कहते हैं पर लगभग वही भाव होता है। और जब इस तरह से ये वाणी सुनते हैं तो चतुष्कुमारों पे तीन प्रकार का प्रभाव होता है। पहला पहला प्रभाव है कि भगवान की वाणी ही इतनी मधुर होती है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण, जो गोपियां कहते हैं दशम स्कंद में गोपी गीत में 31वें अध्याय में कि भगवान मधुरया गिरा, कि आप जो वचन आपकी जो वाणी और वचन दो अलग चीज है। वाणी मतलब जिस प्रकार से हम बोलते हैं और वचन मतलब जो हम बोलते हैं, तो हम वाणी से वचन बोलते हैं। तो भगवान की वाणी भी मधुर है और उस मधुर वाणी से जो वचन बोलते हैं वह भी बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले जो चतुष्कुमार जो भगवान की वाणी सुनते हैं उससे ही वो आकर्षित हो जाते हैं, कितनी मधुर वाणी है वो, तो वो पहला आकर्षण होता है उससे। उसके बाद में मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, वल्गु तो बहुत ही आकर्षक, तो भगवान के वचन है वो बहुत आकर्षक हो जाते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये आकर्षण क्यों है, ये चतुष्कुमार सोच रहे होते हैं कि मान लीजिए अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं और जब हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलने तो उस व्यक्ति के द्वारपाल उसको ही हम डांटने लगते हैं, तो अगर वो द्वारपाल ऐसे ही कोई साधारण वहां पे नौकर है वहां पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर वो द्वारपाल का उस मालिक के प्रति बहुत प्रेम है और मालिक का द्वारपाल से प्रति प्रेम है तो हम सोचेंगे मालिक मुझसे क्रोधित हो गया है क्या। तो उसी तरह से जब ये कुमारों की कुमार जब जय विजय की भक्ति देखते हैं तो वे मोह में पड़ जाते, वे विचार में पड़ जाते हैं कि वे भी चिंतित है कि भगवान हमसे क्रोधित हो गए या क्या क्या प्रभाव होगा, कि भगवान के जो इतने महान भक्त है उनको हमने शाप दे दिया है तो क्या होगा इससे। तो इसीलिए जब भगवान इस तरह से बोल रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये भगवान प्रामाणिकता से बोल रहे हैं या भगवान हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कि भगवान हमारा मजा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कभी संभव नहीं है कि लक्ष्मी देवी अगर भगवान की ओर आकर्षित है तो भगवान का ही सर्वाकर्षित्व है उसके कारण आकर्षित है। ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी देवी कि भगवान के चरण भगवान के सिर पे ब्राह्मणों की धूलि है इसके कारण लक्ष्मी देवी आकर्षित है उनसे, और वैसे ही भगवान पवित्राणाम पवित्रम यो वह सब चीजों में पवित्र है, मंगलाणाम च मंगलम वह सब चीजों में सब मंगल चीज है। तो वो सोचने लग गए कि जो बता रहे हैं भगवान यह क्या हमारा मजाक कर रहे हैं या क्या सत्य बता रहे हैं, सत्य तो हो नहीं सकता है, पर भगवान उनका जो प्रसन्न हासारुण लोचन साथ उनका जो चेहरा है उनकी वाणी है इतनी प्रसन्न है कि इतनी शांत और प्रसन्न है कि ऐसे भी लग रहा है कि ये क्रोधित होके कुछ व्यंगात्मक रूप से कुछ बोल रहे हैं। तो वो सोचने लग गए ये भगवान क्या बोलना चाहते हैं, ये प्रसन्न है या ना या क्रोधित है क्या है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से मग्न हो गए भगवान के वचनों में, भगवान के वचन के कारण। और फिर सोचने लग गए कि जो भी हो अभी हम भगवान को हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करते हैं, तो अगर वे क्रोधित है तो शांत हो जाएंगे और क्रोधित नहीं है तो भी उनका गुणगान जब करेंगे तो वो और प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु हम आपका दर्शन करने आए थे और हम आपके दर्शन की इतनी उत्कंठा थी हमें कि हम सब कुछ भूल गए उसमें, और जब कुछ व्यत्यय आ गया हमें आपके दर्शन में तो हम क्रोधित होकर हमने आपके सेवकों को शाप दे दिया है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं इसमें कि जो ब्राह्मण होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ नाम के ब्राह्मण होते हैं सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है पर कुछ ब्राह्मणों का गुण नहीं है उनमें, और कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जिनमें थोड़ी भक्ति भी है, और कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त ब्राह्मण जो है वो उनका जो उदाहरण देते हैं भक्त श्याम सिंधु में वह नारद मुनि, ब्रह्मा जी से जन्म हुआ उनका ब्राह्मण ही है वह, और जो भक्ति और ज्ञान से मिश्रित जो है वह है उसका उदाहरण देते हैं वशिष्ठ, जो रामायण में जो वशिष्ठ है वो वशिष्ठ नाम के जो ऋषि है उनका भागवत में भी लीला आती है, तो वह एक प्रकार के मिश्रित भक्त है वो। और फिर कहते हैं और बहुत से लोग जो होते हैं स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, वो केवल नाम से ब्राह्मण होते हैं पर उनकी कोई भक्ति नहीं होती है। तो फिर जो वास्तव में भगवान ने जो गुणगान किया है वह स्मार्त ब्राह्मण का गुणगान नहीं है, वह शुद्ध भक्त जो ब्राह्मण है उनका गुणगान है। तो अभी जो चार कुमार जो है वह ब्राह्मण है पर वो अब तक भक्त नहीं थे, अभी अभी वे भक्त बने हैं। कैसे अभी अभी भक्त बने हैं, मतलब क्या, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उससे भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो गया, उससे वे भक्त बन गए। तो भक्तर साम्र सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं और उसके जो तात्पर्य लिखा है दुर्गम संगमणी टीका नाम के जीव गोस्वामी ने, उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान का साक्षात दर्शन है और भगवान के सेवकों का संग है, इन दोनों के प्रभाव से जो चतुष्कुमार थे, चतुष्कुमार वे ब्रह्म ज्ञान में थे, तो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है। आप जानते हैं कि भगवान के भक्ति में पांच रस होते हैं, शांत रस मतलब जैसे आध्यात्मिक जगत में पेड़ वृक्ष वगैरह होते हैं, वे भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं और शांति की दृष्टि से सेवा करते हैं। वो दास्य रस का उदाहरण है हनुमान जी, वो भगवान के दास्य भाव से अलग अलग प्रकार सेवा करते हैं। तो वैसे ही साख्य रस जो है भगवान के मित्र अर्जुन है, उससे ऊंचा है वात्सल्य रस, जैसे यशोदा माई है माँ के रूप में उनकी सेवा करते हैं भगवान के, और सर्वोच्च है माधुर्य रस, राधा रानी जो है वो भगवान की सेवा करती, सीता देवी जो है माधुर्य भाव में। तो इस प्रकार जो 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 पांच स्तर है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और इनके नीचे है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान से प्रगति करके जब जी चतुष्कुमारों को जय विजय का संग मिला है, जय विजय भगवान के सेवक है, वो दास्य रस में सेवक है, वो भगवान के दास है वो, तो उनकी सेवा के कारण दास्य रस में जो भक्त है उनकी अगर संग मिलता है, उनका कृपा मिलती है, उनका सानिध्य होता है, तो व्यक्ति दास्य रस तक जा सकता है। अगर हमें माधुर्य रस की प्राप्ति करनी है, जो माधुर्य रस में भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका कृपा प्राप्त करनी है। तो चतुष्कुमारों की चतुष्कुमारों को जब जय विजय का संग मिला, उससे वे दास्य रस तक पहुंच सकते थे, पर क्योंकि उन्होंने चतुष्कुमारों ने जय विजय के प्रति अपराध किया, इसीलिए जितनी उनकी प्रगति हो सकती थी उतनी प्रगति नहीं हुई। पर क्योंकि भक्तों का संग था, तो भक्त सावन सिंधु में वर्णन आता है, जी गोस्वामी इसका विस्तार करते हैं कि अगर हम भक्तों के संग में भक्तों की सेवा करते हैं तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं, और जिस भक्त की जिस स्थिति है उस स्थिति तक हम पहुंच सकते हैं। पर भक्तों की सेवा करते समय अगर हम थोड़ा सा अपराध करते हैं तो फिर जितनी प्रगति हो सकती है उससे कम प्रगति होती है, और भक्तों के संग में रहकर हम बड़ा अपराध करते हैं तो जहां पे है वहां से पतन भी हो सकता है। तो यहां पे जो चतुष्कुमारों ने जय विजय के प्रति अपराध किया था, वो एक तरह से भक्त को शाप देना ये एक बड़ा अपराध है, पर क्योंकि वो अज्ञान में था, वो जानते नहीं थे कि जय विजय ये महान भक्त है, और क्योंकि वो जो अपराध था वो कोई भौतिक क्रोध के कारण नहीं था, वो भगवान के दर्शन की उत्कंठा थी, भगवान का दर्शन हमें कब मिलेगा, उस भाव से उतावले थे और उसके कारण वे क्रोधित हो गए थे। तो इसलिए वह बड़ा अपराध नहीं था, वह लघु अपराध भी नहीं था, वह विभु अपराध भी नहीं था, वह मध्यम अपराध था, और मध्यम अपराध के कारण क्या हो गया, वो जितना प्रगति कर सकते थे उतना प्रगति नहीं कर पाए, और वे जो ब्रह्म ज्ञान से शांत रस तक पहुंचे। चतुष्कुमार जो है वे शांत रस के आदर्श भक्त हैं। शांत रस मतलब वह भगवान के विभूतियों पर चिंतन करके, भगवान के व्यक्तित्व पर चिंतन करके, चिंतन करने में वह आनंद लेते हैं, पर वह भगवान का पार्षद बन के भगवान के व्यवहारिक रूप से कोई सेवा करने का भाग्य उनको नहीं मिलता है। और फिर इस तरह से जब चतुष्कुमारों ने भगवान से माफी मांगी और वो कहने लग गए कि हे प्रभु, हमारे पिताजी हमको बताया था आपके बारे में, जब उनसे श्रवण किया तब पहले हमें आपका हमारे हृदय में दर्शन हुआ, हमें करणों से हमारे पिता के वचनों से हमने श्रवण किया और आपका दर्शन हुआ, पर आज आपने व्यक्तिगत रूप से हमें दर्शन दिया है इसीलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, और अगर आपके प्रति हमने कोई अपराध किया है तो कृपया हमें माफ कर दीजिए। और फिर उन्होंने भगवान का प्रदक्षिणा की और वो वैकुंठ में गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, वहां से लौट के चले गए वो। और जब वो लौट के जा रहे थे तो जो विजय विजय थे वे बहुत उद्विग्न हो गए कि अभी भगवान का संग हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जब जैसे कि वास्तव में आपने हमेशा प्रामाणिकता से मेरी सेवा की है, इसीलिए आपका पतन नहीं होना चाहिए कभी। पर साथ साथ क्योंकि ब्राह्मण ने आपको शाप दिया है और जो ब्राह्मण के वचन है उनका मैं आदर करना चाहता हूं, इसीलिए जो शाप है इसको टाला भी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एक सुविधा देता हूं। क्या सुविधा देता है? वो कहते हैं कि आप जय और विजय के रूप में अभी एक एक व्यक्ति है, आप दो में विस्तारित हो जाओ और जय विजय जो स्वरूप में है वो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और आपका जो एक विस्तार है वह मुझे छोड़ के भौतिक जगत में चला जाएगा। और इसकी पुष्टि करने के लिए विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि आठवें स्कंद में जब बलि महाराज की लीला आती है, तो जब बलि महाराज वहां पे होते हैं तो भगवान विष्णु वामन देव के रूप में यहाँ पे आते हैं, तो तभी वामन देव पे आक्रमण करने के लिए बलि महाराज के साथ जो राक्षस है वो सब आते हैं और वो राक्षसों का प्रतिकार करने के लिए वहां पे जय विजय होते हैं और जय विजय उन सबको तुरंत रोक देते हैं। तो चक्रवर्ती पाद वहां पे सवाल करते हैं कि जो तीन शाप है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं तो जय विजय वहां पे आध्यात्मिक जगत में कैसे है वे? तो कहते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जगत से किसी का पतन नहीं होता है, खास करके अगर किसी ने भगवान की ईर्ष्या नहीं की है, भगवान का द्वेष नहीं किया है, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा नहीं की है तो व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता है। चतुष्कुमार का शाप भी लगा है तो भी जो भगवान के प्रामाणिक सेवक अजय विजय उनका पतन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आचार्यों ने हमेशा जब भी मंदिर बनाए हैं तो उन्होंने सोचा कि जय विजय का पतन हो गया, ऐसे जय विजय भगवान के अभी द्वारपाल नहीं है, हमेशा वो जय विजय की जो मूर्ति है मंदिर के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे सनातन काल से वो द्वारपाल हैं। और जो चतुष्कुमार है कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो पर जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है उसका शाप भक्त को प्रभाव नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे दिखाने का भाव क्या है कि वो जो ब्राह्मण व्यक्ति है उनका उनको क्रोधित करता है व्यक्ति, उनका शाप मिलता है तो वो शाप से भले ही जय विजय प्रतीत नहीं हो गए पर उससे वे प्रभावित हो गए, उनके एक विस्तार को तो इस भौतिक जगत में आना पड़ा। तो इसीलिए इससे चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि इस लीला से दर्शाया गया है कि हमें किसी के प्रति अपराध करने के लिए कितना चौकन्ना रहना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार से अपराध है, जय विजय ने चतुष्कुमारों का अपराध किया और चतुष्कुमारों ने जय विजय का अपराध किया। तो इसका मूल भाव क्या है कि भक्तों को किसी भी कारण से एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दो भक्त होते हैं दोनों भगवान से के लिए प्रिय है। तो हमें लग सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सत्य है, कोई और बोल सकता है, दूसरा बोलता है वही सत्य है, मैं जो बोल रहा सत्य है, यही अच्छी तरह से करना चाहिए। तो भौतिक जगत में व्यावहारिक रूप से कई बार मतभेद आ सकते हैं और मतभेदों का एक संवेदनशील भाव से एक परिपक्व पद्धति से उसका निवारण करना है। अगर हम दो भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है दोनों को जाते हैं तो उससे दोनों एक दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हैं। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि तुम मेरे प्रति कोई धोरे तुम मेरे प्रति अपराध कर रहे हो, मैं इतना महान भक्त हूं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें। पर हमेशा हमें सोचना चाहिए कि दूसरे भक्त है, वे भी इस दुनिया में लाखों लाखों मात्रा में लोग हैं, उनसे कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनमें से मनुष्यानाम सहस्रेशु कोटि कोटि लोगों में कुछ ही लोग भक्त है, तो हर एक भक्त भगवान के प्रति कितना प्रिय है। किसी के भक्त के प्रति मैं कुछ बुरा बोलूंगा तो वो एक अपराध है, तो इसलिए मुझे अपराध नहीं करना चाहिए। तो चतुष्कुमार जो थे ऐसे नहीं समझना चाहिए हमें कि केवल दास्य रस में है इसलिए वो महान भक्त नहीं है, दास्य रस भी आध्यात्मिक जगत का ही एक भाग है और वे भगवान के शुद्ध भक्त है और भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है उनका, और उनकी कृपा से जो कोई कुमार संप्रदाय में महान भक्त हुए हैं वो सब भी पीढ़ियों पीढ़ियों तक उद्धार शुद्धिकरण करके उनका उद्धार होके वे भगवत धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। जतुष कुमार जो है इस तरह से उनके जीवन से वे दिखाते हैं हमें कैसे भौतिक प्रलोभन से बचना है, भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित हमेशा रहना है, और अगर हमारी सेवा के नाम पे भी अगर किसी के प्रति हम अपराध कर किसी के प्रति क्रोध हो जाते अपराध कर देते तो उससे चौकन्ना रह के माफी मांग कर हमें हमारी भक्ति में अग्रसर होना है। यह सब हम चतुष कुमार सीख सकते हैं। इस तरह से विमहाजनो ये न कथा सपंथा। किसी का कोई सवाल है? यस प्रो। सभी प्रभु जी का सवाल है कि चार संप्रदाय है, सभी जीवों का अगर एक ही उद्देश्य है कि भगवत धाम की प्राप्ति करनी है तो चार संप्रदायों की जरूरत क्या है। वास्तव में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि विविधता जो है यह भोग की माता है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो विविधता ये बहुत यह न केवल भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बद्धावस्था के कारण है, विविधता या आध्यात्मिक जगत में भी है। हाँ, अगर हम इस सवाल को ले सकते हैं तो अगर भगवान एक ही है तो भगवान के अलग अलग रूपों की क्या जरूरत है? तो अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान के इतने अलग अलग रूप क्यों है? क्योंकि अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव है और अलग अलग भावों के अनुसार भक्त अलग अलग भगवान के गुणों की ओर, भगवान की लीलाओं की ओर, भगवान के रूप की ओर वो आकर्षित होते हैं। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में दो चीजें, साधन और साध्य। तो जो साधन है मतलब जो हमें प्राप्त करना है, साध्य मतलब जिस पद्धति से प्राप्त करना है। तो जैसे हमें यहाँ से बॉम्बे जाना है तो हम कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं चाहिए तो मुश्किल है, पर अलग अलग पद्धति से जा सकते हैं। तो जो उद्देश्य है बॉम्बे जाना और साधन है बॉम्बे जाना, साध्य जो है बॉम्बे जाना है, साधन जो है किस पद्धति से मैं प्रवास करने वाला हूँ। तो उसी तरह से जो भगवत धाम की प्राप्ति है तो उसमें भगवान के भी अलग अलग रूप है और भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन हैं। उन साधनों में भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है पर भक्ति में भी अलग अलग भाव है। ऐसे गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में रागानु का भक्ति है और वैदिक भक्ति है, और दोनों प्रकार की भक्तियों से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे नहीं है कि वैदिक भक्ति से रागानु भक्ति जाना है, ऐसे भी हो सकता है, पर वैदिक भक्ति से भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो सकती है। जो विविधता जो है वह व्यक्तित्व का एक लक्षण है। वैरायटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी। जब अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भावनाएं होती है, वृत्तियां होती है, आकर्षण होते हैं, तो उसके अनुसार भगवान ने भी अलग अलग मार्ग दिए हैं। चार संप्रदाय जो है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इंजीनियरिंग को, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो भारत में सबसे अभी ना जो प्रधान सबसे प्रधान कॉलेज जो है वो IIT है। तो अभी सब लोग एक ही IIT में जा सकते हैं तो अलग अलग IIT क्यों हैं? इतने सारे विद्यार्थी हैं और फिर हर एक IIT में जो एक तरह से जो सिखाया जाता है वो एक समान होता है, पर हर एक IIT की अलग अलग विशेषताएं होती है। किसी IIT में जो लेबोरेटरी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, किसी लेबोरेटरी में किसी और कोई और चीज़ पे जोर दिया जाता है। तो ये अलग अलग विद्यापीठ है, उनकी अलग अलग विशेषता होती है। तो एक तरह से देखेंगे तो ये अलग अलग विशेषता जो है वह अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को आकर्षित करती है। और दूसरा जो भाव है कि इतने सारे जीव है बद्ध कि सबका उद्धार करने के लिए भगवान जितने मार्ग दे उतने भी एक तरह से कम है। इसलिए आपने वो चित्र देखा होगा कि भगवान कृष्ण है और उनसे ही सब अवतार आ रहे हैं और उनसे ही कुमार आ रहे हैं, उनसे नारद मुनि आ रहे हैं, उनसे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, वो चित्रकार उनसे जीसस भी आ रहे हैं, सब उनसे ही आ रहे हैं। तो एक ही भगवान से वे सब आ रहे हैं और वो सब हमें भगवान के पास ले जाने के लिए मार्ग दे रहे हैं। तो ये विविधता है जिससे कि भगवान अलग अलग पद्धतियों से जीवात्मा को अपने व्यक्तित्व के अनुसार आकर्षित करते हैं। क्लियर? कोई और सवाल है किसी का? यस।
जब शांत रस, उदास रस, सख रस, मधुर रस, वत्सल रस, पांच रस है, जब भक्तों को जब जो अभी चतुष कुमार का दास रस से अभी
शांत रस
में आ गए, तब ऐसा भक्तों का जो आगे का रस में उनको जाना था, जाने का वो उनको लाभ मिलता है क्या? मिल सकते हैं आगे।
अच्छा, इनका सवाल यह है कि अभी जो चतुष्कुमारों को शांत रस की प्राप्ति हो गई पर वो दास रस की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो क्या वो आगे जाके दास रस की प्राप्ति कर सकते हैं? तो ऐसे सबसे पहले ये नहीं है कि वो दास रस से नीचे शांत रस में आ गए, ऐसे नहीं था। वास्तव में वो ब्रह्म ज्ञान में थे, उनका पतन नहीं हुआ है। जितनी प्रगति हो सकती थी उतनी प्रगति नहीं हुई एक तरह से। वो जो ब्रह्म ज्ञान से शांत रस तक पहुंचे, वो दास रस तक नहीं पहुंचे। हम ये जो भगवान की लीलाएं होती है उनको हमें दो तरह से देखना है। एक तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, तो हमें सीखते हैं कि हमें भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। पर दूसरी तरह से भगवान की लीला में जो भी होता है वह एक तरह से परिपूर्ण होता है, परफेक्ट होता है वो। तो जो चतुष्कुमार है उनका सनातन स्वरूप जो है वह शांत रस में ही है, तो वही उनको प्राप्ति हुई। ऐसे नहीं है कि जो उनका सनातन स्वरूप है उससे उनका पतन हो गया। पर यहाँ पे दिखाने का, सिखाने की बात क्या है, यहाँ पे सिखाने का ये भाव है कि वास्तव में अगर हम अपराध करते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है। तो कैसे होता है, आध्यात्मिक जगत में जो हमारा स्वरूप है उसी के अनुसार हमारा आकर्षण हो जाएगा। और इसलिए उसमें ऐसे नहीं है कि हम ये एक बाहर की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से हम देख सकते कि ये रस इस रस से ऊंचा है, पर वास्तव में अनुभव की दृष्टि से किसी भी रस में कोई कमी नहीं है। जो भक्त जिस रस में है उस रस में पूर्णतया संतुष्ट है। जब हनुमान जी सीता को ढूंढने जा रहे हैं तो हनुमान जी नहीं सोच रहे कि प्रभु श्री रामचंद्र सीता से इतना प्रेम करते, उतना मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते वो क्योंकि वे जानते हैं कि वह अलग अलग रस है और वो उनकी जो भूमिका है उसमें संतुष्ट है, वो पूर्णतया संतुष्ट है वो। तो इसीलिए ये जो भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए कि इस रस में मुझे प्रगति करनी है, हमें सिर्फ अभी इंद्रियतृप्ति के रस से भक्ति के रस में प्रगति करनी है। वो अगर प्रगति कर लेते हैं तो उसमें उसके बाद जो भी हमारा स्वाभाविक रस है उसमें हम अपने आप आकर्षित होके वहां पे हम लौट जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की गौर, भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।